हरे कृष्णा। हम लोग आज भक्ति वृक्ष पुस्तक या कृष्ण भावना के इंट्रोडक्शन के दूसरे विषय पर चर्चा करेंगे। हम लोगों ने चर्चा किया था कि इंसान का जीवन केवल आहार निद्रा भय मिथुन के लिए नहीं होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, शब्द था केवल, अर्थात आहार निद्रा भय मिथुन ये सब तो सामान्य स्वाभाविक सी बात है जानवरों में और इंसानों में। तो ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि खाना नहीं है या बच्चे पैदा नहीं कर सकता या और कार्य नहीं कर सकते, जो भौतिक कार्य हैं वो करना स्वाभाविक है। लेकिन बात आ रही है कि इंसान का जीवन की विशिष्टता ये है कि हम तपस्या कर सकते हैं, नियमों का पालन कर सकते हैं ताकि आगे जाके हमको लाभ प्राप्त हो, और उस तपस्या का उद्देश्य होना चाहिए ब्रह्म जिज्ञासा। मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, भगवान से मेरा क्या संबंध है, इस जगत में दुख क्यों भोग रहा हूं। तो आज का विषय है कि क्या वाकई इस जगत में हम सुखी हैं या हम केवल दुखों की निवृत्ति करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप देखिए, इस जगत में तीन प्रकार के दुख हैं जो हर व्यक्ति को सताते हैं किसी न किसी समय, एक के बाद एक। इस बात पे निर्भर नहीं करता है कि वो धनी है, कि वो बुद्धिमान है, कि वो गरीब है या कोई भी है, सभी को ये तीन दुख कभी ना कभी परेशान जरूर करते हैं। कौन से वो दुख हैं? पहला दुख है, इसे कहते हैं आध्यात्मिक। आदि मतलब शुरू करने वाला, जहां से शुरू होता है। आत्मा मतलब स्वयं, स्वयं से मैंने अपने ही मन और शरीर से। कोई भी व्यक्ति हमें दुख नहीं दे रहा है, कोई भी व्यक्ति हमें कष्ट नहीं दे रहा है, स्वयं हमारा शरीर और हमारा मन ही दुखों का स्रोत बन जाता है। ये सब जानते हैं आप, कभी कभी कहते हैं कि आज मेरा मन अच्छा नहीं है, मेरे शरीर में कुछ कष्ट हो गया है, इस प्रकार से। तो ये हो गया पहला कष्ट आध्यात्मिक, और इस पे कोई निर्भर नहीं करता है कि व्यक्ति फिर से उसकी भौतिक योग्यता क्या है क्या नहीं है, सब लोग बराबर से दुख भोगते हैं। दूसरा कष्ट है आदि भौतिक, जो अन्य जीवात्माओं के द्वारा हमको दिया जाता है। जैसे मच्छर काटता है, कोई कीड़ा काट लेता है, सांप बिच्छू होते हैं, या चोर डकैत होते हैं, या खराब कह सकते हैं पड़ोसी होते हैं, वो परेशान करते हैं, या घर वाले ही परेशान करते हैं। तो ये अन्य जीवों के द्वारा दिए जाने वाला मानसिक और शारीरिक कष्ट है, जिसे कहते हैं आदि भौतिक। आदि मतलब शुरू, भौतिक मतलब भूत, भूत मतलब जीवात्माओं के द्वारा, अन्य जीवात्माओं के द्वारा जो हमें दुख प्राप्त होता है उन्हें आदि भौतिक कष्ट कहते हैं। और ये भी होता है बहुत बार, जो बहुत पैसे वाले लोग होते हैं वो भी आत्महत्या कर लेते हैं, क्योंकि पत्नी से लड़ाई होती है, बच्चे सुनते नहीं है, ऐसे करके कोई ना कोई दुख जरूर होता है जिसका सोल्यूशन धन नहीं होता है। और तीसरा दुख जो है, कष्ट है, वो है आदि दैविक कष्ट, जो देवताओं के द्वारा दिया जाता है। जैसे कि बारिश, बहुत अधिक बारिश, बहुत अधिक गर्मी, बहुत अधिक जाड़ा, भूचाल, ज्वालामुखी, बहुत सारे आंधी तूफान, बहुत सारे कष्ट व्यक्ति को आते हैं जिस पे हमारा नियंत्रण नहीं होता है। तो इन सभी दुखों का प्रतिकार करने में ही प्राय आप देखेंगे हमारा जीवन चला जाता है। अगर कुछ समय के लिए हम इन दुखों से निवृत्त हो जाते हैं तो उसी को सुख मानते हैं। जैसे गर्मी एक आध्यात्मिक कष्ट है, तो उस गर्मी की निवृत्ति अगर हम एसी चला के कर लेते हैं तो उसको सुख मानते हैं। भूख लगना ये एक शरीर के द्वारा पीड़ा है, कष्ट है, तो उसको थोड़े समय के लिए खा करके अगर भूख की निवृत्ति हो जाती है कुछ समय के लिए तो उसको हम सुख मानते हैं। नींद आना एक कष्ट है, तो नींद जब आती है, थोपी जाती है, तो उसको नींद की थोड़ा निवृत्ति हो जाती है, थोड़ा हम सो लेते हैं, तो उससे अपने आप को हम सुखी मानते हैं। तो आप देख रहे हैं कि इन तीनों कष्टों के द्वारा हम लगातार पीड़ित हैं और इनका सोल्यूशन धन नहीं है, इनका जो समाधान है वो धन नहीं है। ऐसा नहीं है कि आंधी तूफान आ जाएगा तो बस हम धन के द्वारा उसको रोक लेंगे। जैसे कि आप जानते हो या नहीं जानते हो, अमेरिका में एक एल नीनो नाम का इफेक्ट कहा जाता है, उसमें बहुत विशाल विशाल काय तूफान आता है और सब कुछ नेस्त नाबूद कर देता है। यह भी मैं बाली में मैंने सुना था, हमारे भक्त हैं वहाँ पे, बहुत सुंदर वातावरण है, सब कुछ बहुत अच्छा है, प्राकृतिक है, लेकिन एक ज्वालामुखी है इस द्वीप पर जो कि एक्टिव वॉल्केनो है और वो समय समय पर लावा उगलता रहता है। तो इस प्रकार से लोग वहाँ पे मर जाते हैं, लोग कष्ट अनुभव करते हैं और धन के द्वारा उसको रोक नहीं सकते। जब वो ज्वालामुखी फटता है तो वो स्थान उनको खाली करना पड़ेगा। तो कोई बुद्धिमान अगर नहीं होगा तभी ये बात बोलेगा कि मैं इस जगत में सुख भोग रहा हूं। वस्तुतः हम लोग दुख का प्रतिकार कर रहे हैं। जिस प्रकार से पहले जमाने में राजा जो हुआ करता था, जब किसी चोर को दंड देता था तो उसके सर को पानी में डाल देता था। जब सर को पानी में डाल दिया गया, डुबो दिया गया, जब उसकी सांस छूटने वाली होती थी, मरने वाला होता था, तो उसको बाहर निकाल लेते थे, थोड़ी देर के लिए सांस ले लिया करता था और उसी को वो सुख मानता था। तो इस प्रकार से हम लोग निरंतर दुख भोगते हैं, लेकिन हम सोचते हैं थोड़ी देर के लिए अगर किंचित मात्रा में सुख मिल जाता है तो हम सोचते हैं अब बहुत सुखी हो गए और हम बहुत बुरे नहीं हैं। अब इसके अलावा चार और संकट हैं जो व्यक्ति, बिल्कुल हर व्यक्ति भोगता है और उसको भोगना ही पड़ता है, और इनका प्रतिकार तो धन के द्वारा हो ही नहीं सकता, किसी तरह से नहीं हो सकता। जैसे पहला है कष्ट, जन्म का कष्ट। माँ के गर्भ में बच्चे को रहना पड़ता है और पांचवें महीने से वो दुख भोगना शुरू करता है। मैं क्यों बोल रहा हूं पांचवें महीने से, क्योंकि नौ महीने में से चार महीने हम लोग अचेतन अवस्था में रहते हैं, बेहोश रहते हैं, और उसके बाद चेतना आती है और बच्चा प्रार्थना करता है। आप कहेंगे बच्चे को तो ज्ञान नहीं है, कैसे प्रार्थना करता है? ध्यान देना चाहिए कि बच्चे का शरीर बच्चे का है, लेकिन आत्मा को ज्ञान रहता है। तो श्रीमद् भागवत में इसका वर्णन है कि बच्चा किस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान अपने विगत कर्मों की वजह से मुझे अब ये नारकीय स्थिति प्राप्त हुई है, माँ के गर्भ में बैठना पड़ रहा है जहाँ पे सब तरफ मलमूत्र है और बहुत सारे कीड़े हैं जो मुझे काट रहे हैं, तो इस दुख की परिस्थिति में अच्छा है कि मैं आपका स्मरण कर पा रहा हूँ, अब मुझे आप बाहर निकालें तो फिर मुझे मौका दीजिएगा, मैं आपका भजन करूँगा। और बस जब बाहर आते हैं फिर मम्मी पापा के चक्कर में पड़ करके हम भूल जाते हैं कि भगवान से हमने क्या प्रार्थना किया था। तो जन्म एक बहुत बड़ा कष्ट है। इसका विशद वर्णन अगर आपको पढ़ना है, सुनना है, तो आपको तीसरे स्कंद में भगवान कपिल देव की शिक्षाओं को सुनना पड़ेगा। अब एक और कष्ट है जन्म के आने के बाद, जब हम बड़े होते हैं, जैसे जैसे बड़े होते हैं तो कई बार साल में कई बार हम बीमार पड़ते हैं, तो इसे कहते हैं व्याधि। तो व्याधि का कष्ट है, और ध्यान देना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि कोई धनी व्यक्ति है तो उसके जीवन में कोई व्याधि नहीं आएगी, अपितु हो सकता हो कि धनी व्यक्ति के जीवन में अधिक व्याधि आए क्योंकि उसको अधिक भोग करने की सुविधा प्राप्त होती है, और भोग ही रोग की जननी है। एक तो ये प्रॉब्लम है, साथ साथ बुढ़ापे का कष्ट। बुढ़ापा तो सबको ही आता है अगर व्यक्ति जवानी में ना मर जाए तो, और यहां भी आप देख सकते हैं कि बुढ़ापे का प्रतिकार व्यक्ति धन से नहीं कर सकता है। किंचित मात्र ऐसा हो सकता है कि अपनी झुर्रियों को मुंह से गाल से हटाकर गले तक खिसका ले, लेकिन झुर्रियां तो आती ही हैं और बाकी इंद्रियां भी शिथिल होती चली जाती हैं। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि बुढ़ापे का भी कष्ट है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि बुढ़ापे में जो बीमारियां होती हैं उनकी ठीक होने की संभावना व्यक्ति त्याग देता है। जैसे इस जमाने जब आदमी जवान होता है तो सोचता है कि पांव में दर्द है तो ठीक हो जाएगा, लेकिन बुढ़ापे में वो जानता है कि अभी मेरी टांग ठीक होने वाली नहीं है, ये बल्कि और खराब ही होने वाली है। तो बुढ़ापे का कष्ट भी बहुत बड़ा कष्ट है। कभी कभी हम लोग पूछते भी हैं कि भाई हम कितना जिएंगे, क्या हम लंबा जिएंगे, लेकिन सोचा है कि कभी जब लंबा जिएंगे तो आखिरी के जो साल हैं उनकी उसमें क्या हालत होगी, किस प्रकार से हम भजन कर पाएंगे, बड़ी स्थिति खराब होने वाली है। और आप देख रहे हैं कि खान पान खराब होने की वजह से ऐसे ही हमारा शरीर रोगी हो गया है, रुग्ण अभी से रोग होने लगा है, और वृद्धावस्था में क्या होगा उसकी तो हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। और अंत तो गत्वा मृत्यु। बहुत धनी व्यक्ति है, स्वस्थ भी है, सब कुछ है, मान लीजिए किसी तरह से उसने अन्य इन कष्टों को रोकने का प्रयास कर भी लिया, फिर भी उसको सब कुछ त्याग करके फिर दूसरे स्थान पर जाना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि मृत्यु संडे को हॉलीडे करती है या रात में नहीं आती, सुबह नहीं आती। हमारे एक साथ में सेवा करते थे मंदिर में, और उनके लड़की की शादी कर ली और कहे अब मैं निवृत्त हो गया हूँ और अब बस एक निष्ठ भाव से भगवान का सेवा करेंगे, भजन करेंगे, और सेवा करते भी थे, लेकिन कुछ ही समय के बाद जब उनकी लड़की की शादी हो चुकी थी अकस्मात ही रात में उनको हार्ट अटैक आया और वो प्रयाण कर गए। अब वो कहाँ गए कौन जानता है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि व्यक्ति बहुत सोचता है कि मेरी सारी परेशानियों का जो हल है वह है धन है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि ये जो सात परेशानियां हमने देखी ये धन के द्वारा इसका प्रतिकार नहीं हो पाता है। तो कोई बुद्धिमान व्यक्ति होगा वो ये समझ पाएगा कि मैं इस जगत में दुख भोग रहा हूं। मान लीजिए अगर हमको पता चल जाए कि इस जगत में हम दुख भोग रहे हैं या किसी और स्थिति में हम दुख भोग रहे हैं, तो क्या हम वहाँ पर रहना चाहेंगे, नहीं रहना चाहेंगे? तो ये बात, ये जिज्ञासा इंसान के जीवन में करनी चाहिए, समझना चाहिए कि हम किस प्रकार से इस जगत में दुख भोग रहे हैं और क्या तरीका है जिसके द्वारा हम दुख से निवृत्त हो सकते हैं। वैसे हम केवल आपको प्रॉब्लम ही नहीं बता रहे हैं, इसका सोल्यूशन भी है। देखिए, सोल्यूशन तो, प्रॉब्लम तो हमारा शरीर ही है। जब तक व्यक्ति भौतिक शरीर धारण करता रहेगा तो इस भौतिक शरीर के माध्यम से उसे दुख प्राप्त होते ही रहेंगे। तो इसलिए आवश्यक है कि व्यक्ति भगवान कृष्ण का भजन करके उनके धाम की प्राप्ति करे, और उनके धाम की प्राप्ति करके दोबारा उसे इस जगत में कभी नहीं आना पड़ेगा, कभी भी भौतिक शरीर धारण नहीं करना पड़ेगा, और वो हमेशा हमेशा के लिए भगवान के धाम में रह सकता है। और ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं है, ये जो हम बोल रहे हैं इसका आधार शास्त्र है, जिसके बारे में हम चर्चा आगे के चैप्टर्स में करेंगे। लेकिन कोई व्यक्ति अगर भगवान के नाम का संपर्क करता है, भगवान के नाम के द्वारा भगवान का संपर्क करता है, इस हरे कृष्ण मंत्र का जप करता है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, तो वो महसूस करेगा कि इस जीवन में भी उसके जीवन में खुशी आ रही है, शांति आ रही है, और अंततोगत्वा भगवान के धाम की प्राप्ति करेगा, और फिर वो हमेशा हमेशा के लिए इन दुखों से निवृत्त हो जाएगा। तो बुद्धिमान मनुष्य होने के नाते व्यक्ति को इस हरे कृष्ण मंत्र की तपस्या करने का बीड़ा उठा लेना चाहिए और दृढ़ता से इस हरे कृष्ण मंत्र को नियमित रूप से जप करके भगवान भगवत प्राप्ति करके इन दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति, मतलब जड़ से इन दुखों से मुक्त हो जाना चाहिए। तो ये व्यक्ति बुद्धिमान है। आध्यात्मिक कष्ट मतलब हमारे दूसरे जीवों के द्वारा दिए जाने वाले कष्ट, आदि दैविक कष्ट देवताओं के द्वारा दिए जाने वाले कष्ट, और इसके अलावा चार संकट हैं, जन्म का संकट, मृत्यु का संकट, और इसकी निवृत्ति कि धाम पहुंचे, भगवत प्राप्ति कर लें, और सही का है हरे कृष्ण मंत्र, उसके बारे में हम आगे भी चर्चा, हरे कृष्ण मंत्र हमारी मदद करता है। हरे कृष्णा।